ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक नंबर 9। ज्योति ही आदि ही इव आभाति संघाता ना विविच्यते विदन्ति आत्मनम् आत्मस्तम् मिथित्वा कवय अंततः। ज्योतिरादि रिवाभाति संघातान् विविच्यते विदन्त्यात्मनम् आत्मस्तम् मथित्वा कवयो अंततः। शब्दानुवाद। ज्योति ही अग्नि आदि ही तथा अन्य तत्व इव सदृश आभाति प्रतीत होती है संघाता देवताओं तथा अन्यों के शरीर से ना नहीं विविच्यते पहचाने जाते हैं विदन्ति अनुभव करते हैं आत्मानं परमात्मा को आत्मस्तम हृदय में स्थित मथित्वा बिलग करके कवया दक्ष चिंतक अंततः भीतर। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण वेदम भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि जल पत्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता। विचारवान व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं एक एक ही पैराग्राफ पढ़ के इसका ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ लूं, पूरा पढ़ने से क्या होता है बीच में छूट जाता है समझाने के लिए, इसलिए एक एक पैराग्राफ पढ़ के, क्योंकि दो पेज है पूरा इसका जो तात्पर्य है। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सागणा रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतम सवधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदन सहगन ललिता श्री विशाखानितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को कृष्ण बलरंग मंदिर के और से हार्दिक स्वागत करते हैं, जो कि आप ध्यान पूर्वक कथा सुनने के लिए उत्साह के साथ बैठे हैं। लेकिन मैं आपका सामने क्या प्रस्तुत कर सकूं, थोड़ा आप लोग का थोड़ा आशीर्वाद होगा तो कुछ बोल सकूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चीज चर्चा हो चुका है और फिर और विशेष करके कुछ चर्चा करेंगे। पहले ये जो अनुवाद है, अनुवाद में देखिए लिखा गया है, पहला लाइन को देखिए क्या लिखा हुआ, सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक यह अनुभव कर सकता है कि बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित है। भगवान सर्वव्यापक है और भगवान भी हृदय में विराजमान है, यह अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है? प्रभु जी लोगों को अनुभूति होता नहीं, वो आवाज नहीं दे रहे। भगवान है इसलिए तो आपका गाड़ी चल रहा है। भगवान नहीं रहेंगे गाड़ी नहीं चलेगा। भगवान का साथ साथ आत्मा का साथ साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं। जीवात्मा का साथ परमात्मा हमेशा, कभी डिटैच नहीं, हमेशा अटैच है। लेकिन हम डिटैच हो जाते हैं। उनको समझने के लिए वो स्तर को जाना पड़ेगा, भगवान को समझने के लिए उसी स्तर को जाना पड़ेगा। वो स्तर को प्राप्त नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमें बाह्य दृष्टि से देखते हैं। भगवान जो लीला करते हैं हमें बाह्य दृष्टि से, हमें उनका ऊपर दोष आरोप करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी दोषी। जब तक हमें दोषमुक्त नहीं रहेंगे तब तक हमें क्या होगा, हमें दोष युक्त व्यक्ति को देखते रहेंगे। हमें दोष मुक्त होना पड़ेगा तब दोष मुक्त को व्यक्ति को पहचानने के लिए। कोई भी व्यक्ति जब काला चश्मा लगाएगा तब इसको क्या दिखाई देगा, सही? टेस्ट कर लीजिएगा, नहीं है तो फिर आज इधर ले लीजिएगा चश्मा काला लगाकर देखिए। ऑलरेडी हमारा अंदर इतने दोष भरा हुआ है, घड़ा भर चुका है। जब तक वो दोष को नहीं निकालेंगे ना, तब तक हमें भगवान का जो दिव्य लीला को नहीं समझ सकते। बारंबार बता रहा है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, कैसा समझोगे? अंदर का दोष को पहले निकालो। एक बार क्या हुआ, एक ही सन्यासी एक ही दुकान पे गया। मेरे पास बहुत सारा उदाहरण देने के लिए, लेकिन ये जो टॉपिक है ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी एक दुकान पे गया। दुकान पे जाकर पूछा, एक ग्रोसरी का दुकान था। ग्रोसरी समझते हैं ना, ग्रोसरी का दुकान, सभी लोग तो ग्रोसरी खरीदी करते हैं। अभी तो प्रभु जी लोग को ग्रोसरी खरीदी करते नहीं, ज्यादा माताओं लोग को ग्रोसरी खरीदी करने के लिए जा रहे हैं। तो ग्रोसरी जब खरीदी करते हैं तब तो दुकान पे गए सन्यासी ने, तो पूछा, पूरा रैक भरा हुआ था डिब्बा में, तो भरा हुआ था। तो सन्यासी ने पूछा, बोला ये डिब्बा में क्या है? बोला ये डिब्बा में जीरा है। दूसरा डिब्बा में क्या है? ना इसमें गोलमिर्ची है। तीसरा डिब्बा में क्या है? ना इसमें हींग है। और चौथा डिब्बा में क्या है? बोला चौथा डिब्बा में राम है। तो सन्यासी हैरान हो गया, बोला डिब्बा का अंदर राम रहते हैं क्या? सन्यासी पूरा हैरान हो गया, बोला डिब्बा का अंदर बोल रहे राम, मेरे राम डिब्बा का अंदर रहते हैं। तब सन्यासी हैरान होके फिर पूछा, बोला भाई समझाइए वो डिब्बा में क्या है। बोले ये जितने सब डिब्बा देखा ना, ये सारा डिब्बा में भरा हुआ चीज है। जीरा भरा हुआ है, गोलमिर्च भरा हुआ है, हींगी भरा हुआ है, लेकिन पीछे वाला जो डिब्बा है ना वो खाली है, एम्प्टी है। इसलिए वो डिब्बा को हमें बोलते हैं राम है। इसका कहने का तात्पर्य ये था, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दोष भरा हुआ है, दोष भरा हुआ है। जब तक ये दोष को नहीं निकालोगे तब तक राम कैसा विराजमान होंगे, तब तक राम को कैसा दर्शन करोगे। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्यता, ये सब भरा हुआ है ना। अब प्रति मुहूर्त में हमें दोष देखने में लगी जाते हैं ना, तो कैसा हमें दर्शन कर सकते हैं। भगवान सर्वव्यापक है और भगवान परमात्मा रूप में है। परमात्मा रूप में हनुमान जी दर्शन कराया, हनुमान जी दर्शन करा दिया परमात्मा में, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था जितने सब सभागृह में थे। इसका तो कहानी आप लोग सुने हैं ना, कितने भक्त लोग नहीं सुने हैं। हनुमान जी ने अपना सीना को फाड़ कर दिखाया। हाँ जी हाथ उठाइए, जिनको जानकर नहीं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जानते इसका बारे में, क्योंकि सारा चीज की एक्सप्लेन करेंगे ना पूरा लंबा हो जाता है टॉपिक, फिर आप लोग 9 बजे तो घड़ी देखते हैं पीछे। देखिए एक बार क्या हुआ था, रावण जी का जितने सब धन संपत्ति था और जितने सब डायमंड सब कमाते थे, तब सभी कुछ विभीषण को देते थे। और विभीषण जी क्या करते थे, इसको हार बनाते थे, जितने सब डायमंड, जितने सब ज्वेलरी, सब कुछ विभीषण ने बनाया। और विभीषण ने सोचने लगे, ये जो डायमंड का हार है ये रावण का पहनने का योग्य नहीं है। तब विभीषण जब राम अभिषेक हो रहा था तो वो वहां पे गए, तो वो अभिषेक खत्म होने का बाद, हम लोग अभिषेक खत्म होने का बाद क्या करते हैं, माला चढ़ाते हैं ना, माला चढ़ाते हैं ठाकुर जी का, देखा होगा श्रृंगार होता है। तब उन्होंने, विभीषण ने वो डायमंड का जो हार था उनको चढ़ाया भगवान राम को। लेकिन भगवान देखे ये जो डायमंड है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जेंट्स से लोग कुछ डायमंड पहनने के लिए शौक नहीं होते हैं, इतने शौकीन नहीं है, लेकिन ज्यादा शौकीन किसका होता है, देखिए जल्दी बोल देते हैं। कितने शौकीन है। तो इनका इतने शौकीन होता है, तो भगवान राम ने अपना गले में जो डायमंड माला तो उसको उतार के किसका गले में लगाए, माता सीता। माता सीता इतनी पतिव्रता थे, तो वो ये डायमंड को देखते हुए बोले मेरे पतिदेव नहीं पहना, मैं भी उनका सामने पहनने का योग्य नहीं। लेकिन हमारा आज का टाइम पे माता लोग सभी पहन लेंगे, पति पहने नहीं पहने हम के, लेकिन पहनना है सही, इतने परेशानी करते हैं आज का टाइम पे। तब उन्होंने उतार दिया, माता सीता उतार करके फिर देखा, पुत्रवत संबोधन करते हुए हनुमान जी का गले पे दे दिए। तब हनुमान जी इसको देखा, डायमंड तो बहुत अच्छा हो रहा है, लगा है अच्छा डायमंड है, और देख के बोले भगवान राम नहीं पहने, माता सीता नहीं पहने, मैं भी पहनने का योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इसको देखते हुए एक एक करके टुकड़ा करने के, क्योंकि बंदर जाते हैं ना हनुमान जी, बंदर की जाते हैं। और जितने भी बंदर आप यहां देखिए उनका हाथ में दीजिए कुछ भी चीज, पहले क्या करेगा, पहले मुख लगाएगा। तो इन्होंने फिर टुकड़ा करने लगा, तब तो जितने जब टुकड़ा किया तब तो सभी सभागृह में बैठे थे, जो लोग अभिषेक देख रहे थे सभी लोग बैठे थे। ये हनुमान जी का जो कार्यक्रम देखे सब अपना अपना विचार विमर्श करने लगे। क्या विचार विमर्श करने लगे? बोले देखे इतने कॉस्टली चीज को ये दांत में तोड़ रहा है। सभी लोग अपना अपना विचार कर रहे हैं। तब हनुमान जी को सुनाई दिया। तो हनुमान जी कहते हैं जिसमें राम है इसको मैं रखता हूं, जिसमें राम नहीं है इसको तोड़ता हूं, तोड़ के फेंकता हूं, तोड़ के फेंकता हूं। तो सभागृह में जितने सब लोग बैठे थे बोले राम जिसमें है आप रखते हो, जिसमें राम नहीं तोड़ते हो, तो क्या आपका शरीर में राम है? ये प्रश्न पूछ लिए किसको? हनुमान जी को। तो हनुमान जी कहे शरीर में भी राम है, आप देखना चाहते हो अभी दिखा सकता हूं। तब हनुमान जी इमीडिएटली क्या किए, सेना को फाड़े, सेना को फाड़ के दिखाया, दर्शन कराया, जितने सब सभागृह में थे दर्शन कर लिए, राम का साथ सीता विराजमान है हृदय में। इसलिए कहते हैं भगवान कभी भी दूर नहीं जाते हैं, परमात्मा का साथ, जीवात्मा का साथ परमात्मा हमेशा विराजमान रहते हैं। सर्वव्यापी है फिर भी परमात्मा रूप में विराजमान है, यह हनुमान जी ने सारा जगतवासी लोग को दिखा दिया। आज का टाइम पे लोग प्रश्न पूछते हैं भाई भगवान सर्वत्र है आप मंदिर क्यों जा रहे हैं, श्री मंदिर में भगवान विराजमान है क्या? ऐसा प्रश्न पूछते कि नहीं पूछते? बोलिए जोर से बोलिए ऐसे और नो बोलते पूछते हैं। तब इसका आंसर देने के लिए आप लोग के पास कोई जवाब है? क्या जवाब देना चाहिए? एक व्यक्ति इस प्रकार जब प्रश्न पूछा उनको जवाब देने का उत्तर यही है, जो लोग जानते नहीं यही उत्तर देना है। एक बार क्या हुआ था, वो व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था तो गाड़ी क्या हुआ, पंक्चर हो गया। पंक्चर बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं? पंक्चर हो गया। तो जब पंक्चर हो गया तो पंक्चर होने का बाद है और कहां गाड़ी नहीं चल जा सकता है, फिर परेशानी हो गया। परेशानी होने का नाते वही व्यक्ति प्रश्न पूछा था भगवान तो सर्वत्र है फिर आप क्यों मंदिर जाते हैं? तब उसको आंसर दिया गया भाई हवा भी सर्वत्र है, हवा भी सर्वत्र है, फिर आप पंक्चर हो गया तो फिर दुकान में क्यों जा रहे हो? बोलिए दुकान क्यों जा रहे हो? सर्वत्र है हवा, कहां भी देखो ऐसा नहीं कि हवा नहीं है, प्रत्येक जगह पे हवा विराजमान है, तो फिर आपको दुकान जाने का जरूरत क्या है? भगवान सर्वत्र है लेकिन भगवान एक ही स्थान पे रियल बैठे है, तब इसीलिए हम उनका साथ वार्तालाप, उनका साथ मिलना, उनका साथ हमारा जो संपर्क रखने के लिए हम मंदिर जाना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अनुवाद पढ़ते, अनुवाद ये है, इसके बाद हमें तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य अनुवाद में और भी है एक चीज, यहां पे लिखा गया काट का अंदर अग्नि है, जल पात्र में या घड़े में आकाश है, इसको कैसे समझा जा सकते हैं? तब कहते हैं पुष्पे गंधम तीले तैलम काष्टे बनी पय घृतम इक्षो गुड़म तथा देहे पश्या आत्मनम विवेकतः। इसका अर्थ क्या है? काट का अंदर अग्नि है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है कि नहीं है, विश्वास कर रहे ना? काट का अंदर, काष्ट का अंदर अग्नि है, विश्वास हो रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है, बाह्य दृष्टि से हमें देखेंगे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको अग्नि को प्रकट करने के लिए उसको घर्षण करना पड़ेगा। पहले समय पे जब यज्ञ होता था एक ही अरुणी एक ही लकड़ी होता था, वो लकड़ी को घर्षण करके वो अग्नि से क्या होता था, यज्ञ चलता था। पहले समय में मैचिस नहीं था, पहले समय का टाइम पे ब्राह्मण ऐसे थे जो ब्राह्मण मंत्र पाठ करके मंत्र से अग्नि को प्रकट करते थे। आज का टाइम पे ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो कि मंत्र से अग्नि को प्रकट कर दे, आज का टाइम पे सिर्फ जातगत ब्राह्मण रह गए। आप लोग जानते कि नहीं जानते 335 वैरायटी ब्राह्मण है भारत में, हम इतना जानते हैं चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, हैं, त्रिवेदी है, ये सब वेदी बने हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है, मतलब ऐसे काम नहीं करते हैं। ब्राह्मण का जो कर्म है वो नहीं कर रहे, लेकिन पहले समय के ऐसे ब्राह्मण थे, उनका इतना मंत्र का पावर था। आज का टाइम पे है, लेकिन उनका मिलना जुलना बड़ा मुश्किल है। निष्ठावान ब्राह्मण है आज का टाइम पे भी। तब यहां पे कह रहे हैं पुष्पे गंधम, फूल का अंदर गंध रहता है। तीले, तील जो होता है उसमें तेल रहता है। काष्ठे बन्ही और लकड़ी में अग्नि रहता है। पयोघृतम और जो दूध होता है उसमें क्या है, घी है। इक्षो मतलब इक्खु जो होता है उसमें गुड़ है। और देहे पश्चात्मनम और शरीर का अंदर आत्मा है। जो विवेकवान पुरुष, जो अनुभवी पुरुष है, वो व्यक्ति ये चीज को समझ सकता है। और भगवान सर्वत्र है, जैसा कहते हैं जलम विष्णु तले स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमय जगत। जो अनुभवशील व्यक्ति है, जो विचारवान व्यक्ति है, वो हर जगह पे भगवान को दर्शन कर सकता है, जैसा प्रहलाद महाराज दर्शन किए, जैसा प्रहलाद महाराज दर्शन किया। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जगह पे, प्रति मुहूर्त में, प्रति सेकंड में भगवान को देखते थे। जैसा ये बचपन से ही, और नामदेव जो महाराष्ट्र में जो नामदेव भक्त है, वो भी बचपन से ही उन्होंने माता पिता का सेवा करते थे नामदेव ने, माता पिता का। तब ये बचपन से ही इनको दर्शन हुआ था और सर्वत्र भगवान है। तब यहां पे हमें पाठ करते हैं, तात्पर्य में लिखा गया श्रीमद् भगवद गीता का 10:41 में भगवान कहते हैं जज्जत विभूति त सत्यम श्रीमत उर्जितम एव वा तत् तत् एवाव गच्छतम मम ते तेजो असंभवम। यह ज्ञान लो, ये जान लो कि सारी सुंदर जसोसी तथा बलशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्पुलिंग से उत्पन्न होती है। हमें यह व्यवहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उन्हें कार्य को, और यहां तक कि ऐसे कार्य को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं कर पाता है। अतएव भगवान ने किसी भक्त का कितना पक्ष समर्थन किया है, वह भक्त द्वारा संपन्न कार्य से ही आंका जा सकता है। इससे क्या पता लगता है, क्योंकि भक्त कोई चीज को अनुभूति कर सकता है, लेकिन भक्त में तीन वैरायटी भक्त है, तीन ही प्रकार के भक्त है। एक ही कनिष्ठ भक्त, एक ही है मध्यम भक्त, और एक ही क्या है उत्तम भक्त। इसमें अंतर है। कनिष्ठ भक्त वही है, सिर्फ भगवान का प्रति विश्वास करते हुए, भगवान का प्रति निष्ठा रखते हुए सिर्फ पूजा करेगा, लेकिन भक्त का साथ संपर्क नहीं बढ़ाएगा, भक्त का साथ भक्त को सम्मान नहीं करेगा, भक्त का साथ कैसा व्यवहार करना को कनिष्ठ भक्त है नहीं, सिर्फ भगवान का प्रति निष्ठा है, इसको कहते कनिष्ठ भक्त। और जो मध्यम भक्त है, जो मध्यम भक्त है, मध्यम भक्त क्या करेगा, भगवान का प्रति प्रेम, भक्त का प्रति मैत्री, और जो अज्ञानी है उनका ऊपर कृपा करता है, और जो मायावादी निराकारवादी, हाँ, इन लोग से दूर रहता है। यो है मध्यम भक्त। इसका लक्षण सब प्रकाशमान है, आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ोगे, और दूसरा है उपदेशामृत में, ये सारा वर्णन है भक्त का लक्षण। और ये भक्त समझ सकता है, जिस प्रकार मध्यम भक्त का बाद फिर उत्तम भक्त, उत्तम भक्त क्या होता है, निंदादि शून्य, वो किसी का भी निंदा नहीं करता है। और उत्तम भक्त गुरु बन सकता है, गुरु बनने का योग्य है उत्तम भक्त का। और उत्तम भक्त प्रति जगह पे भगवान को दर्शन कर सकता है। और भगवान का सेवा में पूरा निष्ठा और उस सभी शास्त्र में निपुण है, सभी शास्त्र में कोई भी किसी प्रकार के प्रश्न पूछे उत्तम भक्त सभी का आंसर दे सकता है, उत्तम भक्त का। तब यहां पे वही होता है, हम लोग यहां पे प्रभुपाद आगे जाके एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक ही स्कूल होता है, टीचर एक ही है, एक ही स्कूल में एक ही टीचर होता है, स्टूडेंट कितने होते हैं 100, 200, 500 ऐसा ही स्टूडेंट होते हैं, लेकिन टीचर पढ़ाता है और सारा स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एग्जाम होता है, तब एग्जाम में लिखने के बाद फिर टीचर खाता देखता है, टीचर खाता देखने के बाद फिर मार्क देता है, मार्क में किसका 50 आया, किसका 70 आया, किसका 80 आया, किसका 100 to 100 आया, ये क्यों हुआ? क्या इसमें टीचर का गलती है स्टूडेंट का गलती है? बोलिए, स्टूडेंट का क्या गलती है इसमें? क्या उसका माँ बाप अच्छा से खिलाया नहीं? क्या गलती है? ना टीचर को अच्छा पेमेंट नहीं दिए? हाँ, ध्यान से तो पढ़ना दूसरा बात है, दूसरा क्या है उसका अंदर कितनी योग्यता है इसको ग्रहण करने का, ग्रहण करने का। क्या स्कूल में जाके जो पढ़ाई का टाइम पे तब टीचर पढ़ा रहा था तब ध्यान पूर्वक पढ़ रहा था कि उसी टाइम पे मोबाइल देखे व्हाट्सएप में चैट कर रहा था? ऐसा पात्र बनाना पड़ता है, इसमें भगवान का मतलब है, यहां पे टीचर का दोष नहीं, बच्चे का दोष है। और आज का टाइम पे हमें बाह्य दृष्टि से देख के भगवान को और भगवान के ऊपर दोषारोपित कर देते हैं, दोषारोपित कर देते हैं। भाई बाह्य चीज को देखिए, एक ही एक नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाह्य चीज में आप देखो पति पत्नी एक ही साथ में एक ही घर में रह के पत्नी भी पति को ठीक से नहीं समझ पा रहे, झगड़ा चल रहा है, और पति भी पत्नी को नहीं समझ पा रहे, एक ही घर में एक ही साथ में बैठ के खाना खाना, कहां घूमना, कहां सब कुछ करने का नाते भी, ये तो मैटेरियल चीज को नहीं समझ पा रहे इस चीज से, और भगवान को समझना इतना आसानी है? आप सोचिए क्यों, क्योंकि हमें हर चीज बाह्य दृष्टि से देखते हैं, अभी आंतरिक दृष्टि नहीं हुआ, अंतर्मन नहीं हुआ, तब कैसा भगवान का लीला को समझोगे? संसार में लोग भगवान राम का ऊपर इतनी दोषारोपित करते हैं, भगवान राम जब सीता को अपहरण करके रावण ले लिया तब भगवान राम ढूंढते ढूंढते और चिल्लाते चिल्लाते सीते सीते सीते, तब ये दृष्टि से संसार का लोग भगवान राम का ऊपर कितने दोषारोप करते हैं, बोले ये पत्नी के लिए रो रहा है, नहीं किसी के लिए भगवान राम ने रोए संसार का लोग को अभी तक भी मालूम नहीं, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। और बाईचांस हम लोग का स्थिति में ऐसा हो जाता है ना, बाईचांस कोई स्त्री चला गया फिर हम क्या कर सकते थे उसी टाइम पे, भाई चलने दो भाई, वो तो गया गया, मैं और दूसरा है ना, बहुत सारे लोग ऐसा घूमते रहते हैं और किसी को शादी कर ले। भगवान राम ने मर्यादा को कभी भी लंघन नहीं किया, और माता सीता भी लंघन नहीं किए। अशोक वाटिका में माता सीता को जब रखा गया तब उसी टाइम पे किसी को भी दूसरा दृष्टि से भी नहीं देखे, यही है शिक्षा सब। लेकिन बाह्य दृष्टि से भगवान को हमें, भगवान का लीला को हमें नहीं समझ सकते हैं। और भगवान के अंदर भी भगवान, यहां पे आगे बहुत सारा चीज बताया गया है, भगवान का अंदर भी भगवान कभी कभी रजोगुणी में आ जाते हैं, कभी कभी तमोगुणी में आते हैं, कभी कभी सत्वगुणी में आते हैं, सब लीला करने के लिए। लेकिन हम लोग को क्या करेंगे, भाई ऐसा क्यों किया इमीडिएटली हम, क्योंकि सुबह से शाम तक हमें अंगूठी दिखाने में लगे पड़े हैं ना, सही है कि नहीं बोलिए, पूरा दिखाने में। लेकिन पहले जानना चाहिए, ये अंगूठी दिखाने का पहले तीनों अंगूठी आपका साइड में है, माला जपते हो ना, देखिए तीनों अंगूठी आपका साइड में है, दूसरा को देखने का दिखाने का पहले आप खुद को सुधारो, पहले खुद को, खुद का जितनी दोष है देख लो पहले, दूसरा को दिखाने का पहले, बहुत सावधान। और बाई चांस आप किसी का भी दोष देखेंगे, वैष्णव का और भगवान का भी, और ये निश्चिंत है उसको नरक जाना, ये प्रमाण है, पद्म पुराण में श्लोक है, विपर्जा आचार कारिच मद्भक्त सर्वदा सूचि ही त दोषम दर्शनम प्रचुष्टे वै निरेय गानन कदाचित शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाने पर भी मेरा भक्त सदा सर्वदा पवित्र ही है। मेरे भक्तों में जो दोष देखता है एवं उनकी निंदा करते हैं वो निश्चय है नरकगामी होता है। मैंने नहीं बोल रहा हूं, ये प्रमाण है शास्त्र में, इसलिए तो भगवान भगवद गीता में बताई दिए, क्या बताए, कौन सा श्लोक है, अपिचेते शूद्राचरा भजन्ते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य समग्र व्यवसित हिस्सा। कितने हमको पता नहीं चलता है ये कितने अच्छा भक्त है, क्योंकि हमें भक्त का अंदर कितना 99% दोष हो, लेकिन एक ही अच्छा गुण है जो कि संस्था का साथ जुड़ा है, ये देखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, संस्था का साथ जुड़ कर रहा है, एक ही % अच्छा गुण है जो कि प्रभुपाद का संस्था में जुड़ा है, भगवान का नाम ले रहा है, जो भी भगवान का नाम लेता है उनको तो मानसिक प्रणाम करना चाहिए, नियम विधि पालन नहीं कर रहा है कि दीक्षा नहीं लिया, लेकिन ये कनिष्ठ मध्यम और उत्तम ये सब दीक्षित है, उनको प्रणाम करने का विधि भी है, कनिष्ठ भक्त को हाथ जोड़ना चाहिए, मध्यम भक्त को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और उत्तम भक्त को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ता में उत्तम भक्त आ रहा कि गुरु आ रहा है और आप लोग को जा रहा है रास्ता में भी देख लिया तो बस वहां पे साष्टांग प्रणाम कर रहा है, ध्यान रखना चाहिए स्थान काल पात्र देख के, ऐसा नहीं रोड का ऊपर आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और गाड़ी आ गया इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए। ठीक है, तब आगे भगवद गीता 10:10 में बताते हैं, भगवान यह भी कहते हैं, तेषाम सतयुक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जगम तम जन माम उपजान्ति ते। मैं पढ़ लेता हूं, फिर पूरा पढ़ता हूं, नहीं तो फिर टाइम ये हो जाएगा। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं, यह अत्यंत व्यवहारिक है। शिक्षकों द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब उन शिक्षा को अधिक अधिक ग्रहण करने में समर्थ हो, अन्यथा शिक्षकों द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी वो अपनी विद्या के कोई प्रगति नहीं कर पाता, ऐसे में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षक किसी को पक्षपात नहीं करता है पढ़ाने में, सभी को समान दृष्टि में, जिस प्रकार यहां पे आता है ना समदर्शी भगवान, भगवान समान दृष्टि से देखते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, इसी प्रकार टीचर भी पक्षपात नहीं करता है। तब जब कृष्ण कहते हैं तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धिजगम तम, तब यह सूचित होता है कि कृष्ण हर एक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मनुष्य को उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए, यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्तिमय कार्यकलाप करता है तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि भगवान कृष्ण इस भक्त पर अधिक कृपावान है। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि भगवान ने भक्त की उन्नत स्थिति का कारण ही उस पर कृपा की है, ईर्ष्यालु लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। ऐसे मूर्ख ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्यों को न्यून आकलन करने का प्रयास करते हैं, यह वैष्णव नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करे, इसलिए श्रीमद् भागवत में वैष्णव को निर्मत सर कहा गया। वैष्णव जन न तो अन्य वैष्णव से कभी ईर्ष्या करते हैं, न ही अन्य किसी से, इसीलिए निर्मत शरणम सतम कहलाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में बतलाती है, मनुष्य ये समझ सकता है कि वह किस तरह सतगुण रजगुण तमगुण से संस्कृत होता है। यहां पर जो उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से अग्नि सतगुण की द्योतक है। हम अग्नि के परिणाम से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की संरचना समझ सकते हैं। इस प्रकार जल रजगुण का द्योतक है। हमारी क्षुद्र त्वचा में तथा विशाल अंटार्कटिक सागर दोनों ही में जल है, और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। आकाश तमगुण का द्योतक है। आकाश के एक छोटे से घड़े में भी है और अंतरिक्ष में भी है। इस प्रकार अकलन न्याय द्वारा सत्व रज तमगुण की मात्रा के अनुसार यह देखा जा सकता है कि कौन देवता है और कौन असुर तथा कौन जक्ष या राक्षस है। केवल देखकर कोई व्यक्ति देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता है, अपितु यह विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यकलाप से ही उसे समझा जा सकता है। कर्म से पता लगता है, देखने से पता नहीं चलता है ये असुर है कि देवता है। देवता तो स्वर्गलोक में रहते हैं, और असुर लोग कहां पे रहते हैं? पाताल लोक में। पद्म पुराण में एक सामान्य परिभाषा दी गई है, विष्णु भक्त स्मृत दैव असुरस्त विपर्जय। विष्णु का भक्त देवता होता है, जबकि असुर या जक्ष इसका ठीक विपरीत होता है। असुर भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता है, अपितु अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वह देवता भूत प्रेत इत्यादि का भक्त होता है। इस प्रकार देवता राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके कार्यकलाप से किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्मनाम शब्द अर्थ परमात्मा नाम है, और वो परमात्मा सबके अंतकरण में स्थित है। अंततः इसकी पुष्टि भगवद गीता में 18:61 में हुई है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर हर एक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देशन करते हैं। भगवद गीता के उपदेश सबके लिए खुले हुए हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें ठीक से समझते हैं, जबकि कुछ लोग इतने अनुचित ढंग से समझते कि वे कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं, यद्यपि वे कृष्ण संबंधी पुस्तक पढ़ते होते हुए। यद्यपि गीता कहती है भगवान उवाच, अर्थात तो कृष्ण ने कहा, किंतु वे कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। यह उनका दुर्भाग्य या उनकी अयोग्यता है जो रजगुण तथा तमगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन्हीं गुणों के कारण वे कृष्ण को समझ तक नहीं पाते हैं, जबकि अर्जुन जैसा प्रगत भक्त उन्हें समझता है और यह कहकर उनका गुणगान करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है तथा परम पवित्र करने वाले कृष्ण को सबके लिए प्रकट है, किंतु समझने की योग्यता होना आवश्यक है। बाह्य लक्षणों के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता भगवान की कृपा किस पर है और किस पर नहीं है। मनुष्य के मनोवृत्ति के अनुसार ही कृष्ण उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह कृष्ण का पक्षपात नहीं, अपितु उन्हें समझ पाने के योग्यता के प्रति उनकी अनुक्रिया। मनुष्य की ग्रहणशीलता के अनुसार चाहे वो देवता हो, असुर हो अथवा जक्ष हो या राक्षस, कृष्ण के गुण उसी अनुपात से प्रकट होते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ है वे कृष्ण की शक्ति के इस अनुपात के प्रदर्शन प्राकट्य को कृष्ण का पक्षपात समझते हैं। परंतु वास्तव में ये बात ऐसी नहीं है। कृष्ण सब पर संभाव रखते हैं और कृष्ण कृपा को ग्रहण करने के क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करता है। यह संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं, रात्रि में यहां तक कि अंधेरे में ही भी
चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष देखता है, सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान है किंतु बादल से आच्छादित होने पर भी ज्योतिर्पिंड नहीं देखते हैं। इसी प्रकार ज्यों ज्यों सत्वगुण में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों भक्ति के कारण उसका तेज अधिक अधिक देखता है, किंतु जो जितना ही रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित होते हैं उसका तेज उतना ही कम दृष्टिगोचर होता है। किसके गुण का प्राकट्य पूर्ण पुरुषतम भगवान के पक्षपात पर नहीं निर्भर करता अपितु विभिन्न आवरण की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह यह पता चला जा सकता है कि कोई सत्वगुण में कितना अग्रसर और कितना रजो तथा तमोगुण में आवृत है। कितना बड़ा, समझ में आया सभी को? नहीं आया किसी को? मैं थोड़ा फास्ट चलाया। देखिए, मैं यहां पे कहना चाहता हूं, प्रभुपाद ने भावार्थ में एक अच्छा उदाहरण दिए। भगवान को समझने के लिए योग्यता होना जरूरी है। देखिए, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भगवान का साथ में था ना, बोलिए, एक ही रथ पर ना, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतने उपदेश देने का बाद भी अर्जुन भी जो परम मित्र है परम सखा है फिर भी अर्जुन भगवान का साथ होते हुए भी फिर भी भगवान को नहीं पहचाना। दसम अध्याय तक चर्चा हो गया, भगवद गीता का दसम अध्याय तक चर्चा हो गया होने का बाद भी, लेकिन भगवान को अर्जुन ने सोचता था तो मेरा मित्र है सखा है, कांध में हाथ डालता था, कांध में हाथ डालता था, कभी कभी हैंडशेक भी करता था भगवान का साथ। तो भगवान उनको एक दिव्य दृष्टि दिया, पहले दिव्य दृष्टि, और भगवान स्वयं जब विश्वरूप लिया और उनको दिव्य दृष्टि दिया तब जाके अर्जुन भगवान को समझ पाया तब जाके हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करने लगा। ये श्लोक कहा अर्जुन ने, कौन सा श्लोक? 10:12 नंबर श्लोक को स्वयं अर्जुन का मुख का ये कहा। अर्जुन ने भगवद गीता में 84 श्लोक कहा और भगवान कृष्ण ने कितना श्लोक कहा? 574 और धृतराष्ट्र ने एक ही कहा और संजय ने कितना? किसी जगह पे कहते हैं 41 और किसी जगह पे कहते हैं, क्योंकि 41 करोगे तो कृष्ण का जो इधर कमी था 574 तब ये ऐड हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा 700, और किसी जगह पे 575 कह देते हैं तब भगवान का और तब अर्जुन का नहीं किसका संजय का तो फिर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मिला के 700 है। और यहां पे मेरा कहने का अर्थ है तब भगवान उनको दिव्य दृष्टि देने का बाद जाके अर्जुन भगवान को समझ पाया, ये मेरे प्रभु है, मैं आपका दास हूं। और वही चीज दिव्य दृष्टि जब तक हमको नहीं मिलेगा, हमें दोष दृष्टि से देख रहा है, दिव्य दृष्टि से नहीं देख रहा है, ये दोनों में अंतर है। यही दिव्य दृष्टि दिया गया संजय को, ये दिव्य दृष्टि दिया गया किसको? संजय को। कौन दिया था? स्वयं गुरुजी व्यासदेव का शिष्य संजय, ये दिव्य दृष्टि पाके और धृतराष्ट्र का पास बैठ के युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है सारा चीज को संजय ने धृतराष्ट्र को बताता था। और जब तक हमारा दिव्य दृष्टि नहीं होगा, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं आएगा, तब तक भगवान का सारा लीला को हमें बाह्य दृष्टि से देखेंगे। ये सभी का हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहां पे मैं बोल रहा हूं तो मेरा नहीं है, कोई ऐसे ऐसे लीला आता है। और वही भी देखिए,
स्वयं जब नरसिंह देव प्रकट हुए ना, नरसिंह देव प्रकट हुए, लक्ष्मी जी हैरान हो गए थे, लक्ष्मी जी भी हैरान हो गए। मतलब मैं जीवन भर इतने, मतलब मैं कभी ऐसा वाला पति नहीं देखा। लक्ष्मी हैरान हो गए थे, लक्ष्मी जाने के लिए भी, अपना पति देव के पास जाने के लिए भी डरते थे। और क्या कहूं, इतना आसानी नहीं है भगवान का लीला को समझने के लिए। पात्रता, जब हमें उसी प्रकार योग्य व्यक्ति से मिलेंगे और अपना जब योग्य आचरण होगा, जीवन भर के कभी किसी भक्त का हमें दोष नहीं देखेंगे। खाली भक्त का नहीं, संसार का लोग का भी। इसमें हमारा क्या फॉल्ट है मैं आपको बता दे रहा हूं। हम मंदिर आते हैं डेली, डेली तो मंदिर आ रहे हैं ना, डेली आ रहा है, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, और मंदिर से जाने के बाद है कोई भक्त को मिल गया, कोई बाहर का लोग को मिल गया, तब हम इमीडिएटली उनका वो ना हरे कृष्ण कहते हैं ना और कुछ, इमीडिएटली मुख मोड़ के चला जाते हैं। भाई यहां पे भगवान को दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, और एक ही व्यक्ति, एक जीव, प्रत्येक जीव का अंदर परमात्मा रूप में प्रभु विराजमान है, और ये दृष्टि जब आएगा तब हर चीज भगवान का, हर लीला को आप समझ सकते हैं। ये दृष्टि शक्ति आ रहा है नहीं है ना, इसीलिए तो कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गभिहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। प्रत्येक जीव का हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान, और प्रत्येक जीव को हमको प्रणाम करना चाहिए, प्रत्येक जीव को। ये स्थिति हमारा नहीं, बाई चांस आप हाथ नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन मन से तो प्रणाम कर सकते हैं। कभी कभी जब सुबह सुबह हमारा मंगल आरती का बाद जब बांछा कल्पतरु होता है, सिर्फ यहीं पे जितने वैष्णव है उन्हीं को आप प्रणाम कर रहे हैं। मन से ये विचार लेना चाहिए सारा जगत में अज्ञानवशत और ज्ञानवशत किसी का, किसी वैष्णव का चरण में मेरा अपराध हो गया तो मेरा को क्षमा कर दीजिएगा। ये मन से भी कर लेना चाहिए, मन से विचार लेना चाहिए। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराशि भागवतम की, शील प्रभुपाद की।